الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إكبار الدرود يا محمد وعلى محمد.
کرتے ہوئے آپ سے سیکھ رہے ہوں گے، اور کل بات ہوئی کہ
نہ کرے, نعوذ باللہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بدقسمتی سے اپنی صداقت کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے. کہیں نہ کہیں ہم کچھ ایسی چیزیں بچوں کو سکھا دیتے ہیں جس کے اندر دو قسم کی طبیعتیں مل جاتی ہیں, ایک ان کی دکھانی کی ہوتی ہے اور ایک ان کی اصلی طبیعت ہوتی ہے. ذرا سب کر پھر ریکویسٹ کروں گا خاموشی کر لیں تو ان شاء اللہ میرے لیے آسانی ہوگی, آپ سن کے یہ کہنا چاہتے ہیں ان شاء اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں ان کو اس کمرے میں لیتے ہیں. اگر مجھے نہ تو گنجنی کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کیوں نہیں آ رہی, تو نہیں ہو سکتا مجھے آ رہی تو آپ کو نہ آ رہی. درود محمد علیہ محمد. تربیت کیسی ہے؟ تربیت وہاں اہم ہوتا ہے اور تربیت ہر اس انسان کی خواہش ہے جس انسان کے پاس کوئی نظریہ ہے. جس کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے اور جس کو اپنے نظریے سے لگاؤ نہیں ہے اس کو اپنا تربیت کی فکر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں خود بھی گھاس کی طرح ہو گیا تھا, یہ بھی گھاس کی طرح ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے اس کو. جس کے پاس کوئی نظریہ ہو, اپنے نظریے سے عشق ہو, اپنے نظریے سے لگاؤ ہو, اس کے سامنے یہ پریشان آتا ہے کہ میں اپنے نظریے کو کمیلے کیسے کروں کہ ابھی اولاد تک پہنچ جائے. جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جائے ادھر لینا سے ماما, حضرت ابراہیم نے پہلا سوال جو کیا قول من ذریتی, خدا میری اولاد میں سے کون بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کے ذہن میں, یہ کس کا تسلسل سننا چاہیے اولاد ہے یا نہیں, یہ انسان کی خواہش ہے. ہم بات بھی ایسے ہیں, اگر ہم دین خدا کے ماننے والے ہیں, اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے خاندان کے ماننے والے ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اولاد کو بھی یہ حقیقت سمجھ میں آئے. اور اگر ہم کسی راستے کو کامیابی سمجھتے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہماری اولاد کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کامیابی راستہ ہے اور اس پر چلنا ہے, کیونکہ وہ خواہش تو بہت اچھی ہے. اس خواہش کو ریئلائز کرنے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ بہت اہم ہے. اور محنت کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے, یہ آپ جو سکھانا چاہتے ہیں, اگر میں تو قانون بنا سکتا ہوں, آپ جو سکھانا چاہتے ہیں اس پر اپنی اولاد کے سامنے عمل کرنا شروع کر دیں. آپ سچ سکھانا چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کو جھوٹا نہ دیکھے. اگر خدا نہ کرے اس نے آپ کو جھوٹ بول کے دیکھ لیا تو پھر یہ سچ سکھانا بہت مشکل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے کہ مجھے غریبوں سے ہمدردی کرنی ہے, پر اس کے لیے آپ چاہیے اسے سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے. اگر اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرے والد کی نظیر امپورٹنس اس بات کی تھی کہ ان کو مدد کرنی ہے بلا کسی گیا کہی کے, بلا کسی شو آف کے, وہ خود بہت اس کو سیکھ لے گا, خود بہت اس کی طرف جائے گا. اسی طرح سے کل میں نے جو اپنا ناراض کیا بچے ویلیوز بھی کہہ رہے تھے, جو آپ کے ویلیوز ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے تو یہ بہت بڑی نادانی ہے. بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ میرے والد کے نزدیک کیا ویلو ہے, میرے خاندان کے نزدیک کیا ویلوز کیا ہیں. درود محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور درود محمد علیہ وسلم کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پہلے
پہلا کام جو کریں مجھے یہ کہ جو اپنی آیت کے اندر چیز سمجھتے ہیں امپورٹنس ہے اس کو لوگ ان بچوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. اس کا بھی دین دینے والا کیا تھا وہی تھا عمل کی زندگی سے کرتے. آپ کا عمل صرف وہ نہیں ہے جو آپ بچے سے کہہ رہے ہوں گے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. بچہ کہنے سے بہت کام سیکھتا ہے, بچہ معاملہ کیے سے سیکھتا ہے, اور جو اصلی آپ کا کیا معاملہ ہے وہ بچے کو سکھا رہا ہوگا. اب کہہ رہا کہ یہ ایک بڑا لطیف سوال ہے, اس کو کبھی میں مزاحم بیان کرتا ہوں اس طرح کہ پاکستان میں اچھے رائٹر تھے خدرت اللہ صاحب نام کر, خدرت اللہ صاحب نے کہا کہ کسی صاحب نام اچھی گاؤں میں سے ایک کتاب اگر اچھا ہے فلانی پڑھنے کے لیے بہت اچھا چاہیے بنے
بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا نہیں پڑھا احترام ضرور کرے گا.
अलबत्ता यहाँ पे खतरनाक मामला, आपके यहाँ हमें बहुत सारे दीनदार देखे हैं जिनकी औलादें दीन से दूर चली जाती हैं, मैंने भी देखे बहुत बड़े बड़े मौलाना हजरात देखे हैं जिनकी औलादें दीन से दूर चली जाती हैं। वैसे भी फारसी में मशहूर मुहावरा है, कहते हैं कि आलिम का बेटा मामले में मुक्तसर बन जाता है, मुक्तसर बन जाता है क्योंकि वो बाकी जमाओं की सारी किताबों को तो पढ़ाता नहीं, वो ढंग बेचना शुरू कर देता है, तो बेचता है वो मुक्तसर बन जाता है ऐसा। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि नींदा बाप का बेटा या औलाद अच्छी नींद करती उसकी वजह होती है, वो देखता है कि है तो नींदार लेकिन मिजाज में हिटलर है, तरीकेकार में डिक्टेटर है। अब वो दीन से चलने लगता है बजाय कि उस बंदे से चले, ठीक है दीनदार है नमाज शब भी पढ़ता है तो ये मालूम काफी बात दुनिया भर की पढ़ता रहता है, लेकिन जब रवैये की बात आती है रवैया अच्छा नहीं है, उस रवैये से चलकर बिहेवियर से चलने की वजह से दीन से चलने लगता है। आप अगर बच्चों को दीनदार करना चाहते हैं तो दीनदारी वो नहीं तो पार्ट टाइम जॉब में दीनदारी हो जाएगी, मतलब मैं सोचूं चूंकि मैं नमाज पढ़ता हूँ बच्चा दीनदार हो जाएगा, अपनी बच्चा पूरी आपकी शख्सियत को एक पूरे पैकेज में देगा, आपकी शख्सियत के पैकेज से जब वो मोहब्बत करेगा तो आपकी दीन से मोहब्बत करेगा, और अगर आपकी शख्सियत से चल गया तो आपकी हस्ती से चल जाएगा, मेरे मुद्दा आपकी दीन से चल जाएगा, तो आप बहुत एहतियात करनी पड़ेगी अल्लाह के मामले कि आप जो भी काम कर रहे हो इतना बैलेंस हो कि उससे आपके बच्चों का दीन भी उनको मिले, आपकी शख्सियत का एहतराम भी उनको मिले, आपके रवैये के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, और इन तमाम को संभालते हुए आप अपनी औलाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक दो हफ्ते इस समाज अदालत में होगा दुरुद भेजो मोहम्मद
डॉक्टर ने उसको चेकअप वगैरह किया, ये लोग घर चले गए, कुछ दिन उसको बुलाया
तरह क्या इस्तेमाल किया, पता नहीं मुझे पानी स्नान कर बने ऐसे वो बहुत सख्त बात कही उसने जो लोगों को बहुत बुरी लगी। लेकिन वो डॉक्टर का हमारा तो सब कानून था उसका भाई इतनी सब बात क्यों की, कहने लगा कि ये आदमी मेरे अंदाज के मुताबिक कम से कम दो दिन से भूखा है, तुम्हारे साथ कितनी दफा नमाज पढ़ रहा है ये बताओ, तुम्हारे जवान का फायदा क्या है, क्यों खड़े हो दूसरे के साथ, अगर तुम्हारे ख्याल में जवान का फायदा यह नहीं होना चाहिए था कि एक दूसरे में दो पैर में शिरकत करते, तो ये दो दिन से भूखा है तुम समझ नहीं आए, दो दिन से भूखा है ये मुश्किल कामों के साथ है, ये जो मॉडर्न लाइफ है इसने हमें क्या बना दिया है, मैं मिसाल में क्या रहा हूँ, इसने हमें जंगल बना दिया, दो तरह बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, हम लोग जंगल बन गए, इधर से एक आदमी उठा रहा है दूसरे को उठा रहा है, बहुत नजदीक है लेकिन दिल बहुत दूर है, बिल्कुल आता ही नहीं है, इस मुश्किल को कैसे खत्म किया जाए। देखिए कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में रब्ता करना इस बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, 50 साल पहले की बात नहीं, 200 साल पहले की बात नहीं, कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मुश्किल है, दिल दूर है, अभी दिल कैसे नजदीक आएंगे, और ये दिल का नजदीक आना आसान काम नहीं होगा, उनका जमाना का नजदीक लो अनफक्ता माफ लो दे जमीन मा अल्लाह रे मगरूब है, ए नबी अगर आप जमीन और आसमान के खजाने की जो बड़े निसार कर देते आप अपने दिलों में जोड़ नहीं सकते थे, अल्लाह ने भी दिलों में जोड़ दिया, तो आपको वाकई नहीं चाहिए कि दिल टूटे गए हों, ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे हों, अपनी ताल्लुकात में रुकावट कहां पर है, मैं इस पर आना चाह रहा हूं, जो इस पर मेरा मैसेज है इसके ऊपर, औलाद की तरबियत को लीजिए, तमाम मसाइल को लीजिए, अपने समाजी इश्यूज को लीजिए, इन सब को लेकर आइए, यहां तक पहुंच जाते हैं, दिल के ताल्लुकात को सही कैसे करें, इंसान एक दूसरे के साथ सही चले कैसे, और यही मुश्किल पाकिस्तान के अंदर भी है, वहां बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, हमें ये भी बताया कि मुश्किल का हल भी यही है कि ताल्लुकात सही हो जाए, मसाल अगर वो उससे कह रहा है कि ताल्लुकात खराब है, इतने रह के चाहे मैं शहीद हो, इसका हल क्या है, तो मैं उसको कहता हूं हल हल में से एक हल ये है, अकेले खड़े नजर ना आओ, किसी जमा के साथ आओ, इज्तिमा के साथ आओ, अकेले खड़े नजर आओगे एक तो ये बहुत आसान टारगेट बन जाओगे, तुम बहुत आसानी से डिलीट किया जा सकेगा, खत्म हो जाओ, दूसरी बात है अकेले होने की वजह से कौन की ताकत में एक आदमी की तुमने कमी कर दी, क्योंकि तुम अकेले खड़े हो, इज्तिमा के साथ खड़े हो तो कौन की ताकत में साथ होगे, अब मुश्किल ये भी है कहने को आसान है कि इस्तेमाल के साथ खड़े होते हो, लेकिन जैसे ही खड़े होते हैं दीवार को हटा देते हैं, इसका क्या करें, अब हमारे सामने एक मुश्किल है, वैस ने इस मुश्किल का हल ये निकाला कि हर इंसान को उसकी शख्सी जिंदगी में मजबूत करके पर्सनल लाइफ में और उसकी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्शन देगी, आप तो गलत नहीं दे सकते उसके काम, वो तो गलत नहीं दे सकता आपके काम, आप उसको कोशिश करेंगे वो आपको कोशिश करेगा, सबको पर्सनल लाइफ में डाल दिया, अच्छा पर्सनल लाइफ में तो चले गए, रिजल्टेंट है, रिजल्ट ये हम जंगल बन, हर राखी ना हर दरअप अपना सिस्टम ये खड़ा है तो दूसरे से कोई बदल नहीं, आप बराबर वाले तरफ को काट के चले गए, ये तरफ मुंह भी निकल गया, जाहिर है कि निकल रहा है, वो ये चाह रहे हैं हमारे साथ के यूज है, उस बात को कैपिटलिस्ट को काटना बहुत आसान है, जो जोर की कदा वाला तो आवाज उठा है उसको काट के रख देंगे, दूसरा आवाज ही नहीं उठाएगा उसकी मैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जालिम के लिए निजाम बहुत अच्छा है, क्योंकि मजलूम के लिए कर मारे और बाबा नहीं है, मजलूम के लिए बहुत बड़ा है निजाम, यहां तो कुरान के लिए हुआ है कि मैं आपके चरण में कई दफा आज सबक पहुंच रहा है, इस दुरु व साधु व रादितु सूरह आल इमरान आयत नंबर 200, सब्र करो, सब्र की तलकीन करो, रात में रहो, एक दूसरे के साथ रात बनाओ, ये बहुत अच्छा है, आज इस रात में रुकावट क्या है, रास्ते अच्छे क्यों नहीं बनते, हमारे साथ मुश्किल क्या है दूसरे के साथ, इसको मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आया अभी तक कुछ तजर्बे से और कुछ दूसरी चीजों से, अगर ये दो पॉइंट हल हो जाए तो रास्ते करना आसान होता है, और अगर ये दो पॉइंट हल ना हो तो रास्ते नहीं बनते, फिर बड़ी मुश्किल है, फिर रास्ते नहीं बन पाते, दुरुद मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि अगर इंसान को अपने बारे में कोई धोखा हो जाए इससे आपका नहीं बन सकता। जो धोखा क्या होता है, उससे धोखा होता है सुपीरियरिटी का, अपनी बेहतरी का। हम लोग अरबी जबान में, उर्दू जबान में मुतकबर इंसान को, अरबी इंसान को हम लोग कहते हैं मगरूर। ये बहुत मगरूर है, सही। अच्छा, ये जो मगरूर का लफ्ज है ये अरबी से लिया गया, उसका पैटर्न बता रहे अरबी से लिया गया। अरबी में इस लफ्ज का मतलब है मगरूर, यानी जिसको धोखा हुआ। मगरूर उस आदमी को कहते हैं जिसको धोखा हुआ, मतलब दुकान पे गए आपको दुकानदार ने चीट कर दिया, आप मगरूर हैं, आपको धोखा हो गया, सही। उर्दू जबान में जिसको मगरूर कहते हैं जो मुतकबर होता है, तकबर दिखाता है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नाम रखा है इसका मगरूर। क्यों? ये जो मुतकबर है इसको धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? कि मैं कुछ हूं। ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट, या कहिए बड़ी रुकावटों में से एक रुकावट ये है, वो ये अपने आप को बड़ा समझ रहा है। आप ताल्लुकात नहीं बनते, आप जब तक सामने वाले को बराबर की सतह में नहीं लाएंगे, अपने आप को गिरा दिया उसको ऊपर उठना है, लेकिन बराबर की सतह में, अगर बराबर की सतह में नहीं आ रहे ताल्लुकात कैसे बनेंगे? कोई आदमी कब तक मेरा गुलाम रहेगा? वो पहला मसला तो यही, वो गुलाम बनेगा ही क्यों? कब तक तो दूर की बात है, कब तक तो मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, कब तक मैं कह रहा हूं यहां यही कह रहा हूं। मसलन अगर मर्द ये समझ रहा है मैं कुछ हूं, और मिसाल के तौर पर बीवी को कुछ नहीं समझता है, या वो मिसाल के तौर पर साहिबा को समझ रही है वो कुछ है, और कुछ और कुछ नहीं समझ रही है, तो ये जो डिसबैलेंस रिलेशनशिप कब तक चलेगी? क्या सामने वाला हमेशा गुलाम बना रहेगा? क्यों बना रहे? सिर्फ एक मामला हो सकता है, इसके दिमाग में कोई मजबूरी आ रही है कि वो इसके गुरूर को बर्दाश्त करे, वरना तो कभी बर्दाश्त नहीं करे। इसका मतलब यह है कि ये जो शख्स तकबर दिखाएगा कुछ दिन तक तो शायद चले, जब इसके पास कोई ताकत हो सामने वाले कमजोर हो। जिस दिन सामने वाले को जहन में कोई चीज आएगी नहीं, इसके पास कोई ताकत नहीं है, तो मामला खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है तकब्बुर के साथ पायदार ताल्लुकात स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हो सकते, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बड़े फ्रेजाइल रहेंगे। जिस दिन पावर का और ताकत का बैलेंस टूटा या डिसबैलेंस टूटा, उस दिन ताल्लुकात खत्म हो गए। इसके लिए बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सबको जिक्र नहीं करूंगा। बस पहली चीज जो रुकावट है वो तकब्बुर है। अब हम तकब्बुर इंसान के साथ एक और मुसीबत भी है, इसको कोई समझाने वाला भी नहीं होता कि तुम्हें तकब्बुर है, वो ये समझ रहा होता है तुम्हें नॉर्मल है, यानी वो नॉर्मल समझ रहा होता है जिंदगी में कि मैं बड़ा हूं, सारे मेरे सामने छोटे रहे, जो मैं करूंगा वो हो जाए, खत्म। ये नहीं हो सकता, ये दुनिया नहीं लगी इस तरह से। इस दुनिया में इंसान बसे हुए हैं, हर इंसान की अपनी वैल्यू है ना, मर्द और औरत के ताल्लुकात में कोई तकब्बुर बर्दाश्त नहीं करेगा, दूसरे इंसानों का मामले खत्म कर दीजिए। ज्यादातर आपको पायदार ताल्लुकात चाहिए, चाहे वो मियां बीवी के ताल्लुकात हों, चाहे वो दोस्तों के ताल्लुक ताल्लुकात हों, चाहे वो इदारों के अंदर ताल्लुकात हों, चाहे वो आपका बिजनेस ताल्लुकात हों, कहीं पर भी पायदार ताल्लुकात हैं, पहली चीज जो समझ में आती है तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इस तकब्बुर के साथ कुछ नहीं हो पाया। और एक बात अजीब है कि मुतकब्बिर इंसान की सबसे बड़ी सजा यह है कि आखिर में तनहा खड़ा हो, आखिर में अकेला रहना। तो अगर किसी को तन्हाई बड़ी मुसीबत लग रही है तो तकब्बुर से बच जाए। अगर मुतकब्बिर रहेगा आखिर में तन्हा खड़ा हो, और तन्हाई बहुत बड़ी सजा होती है, तन्हाई बहुत सख्त सजा है, तन्हा रहना बहुत मुश्किल काम है इंसान के लिए। तो बजाय कि उस तकब्बुर की वजह से तन्हाई में फंसे, अपने आप को दूसरों के बराबर कर ले, और दूसरों के बराबर करने में मैंने अर्ज किया कि हर किस्म के ताल्लुकात में। अच्छा, ये भी करता चलूँ, जाहिर धोखा ना दे मुतकब्बिर को, चाहे वो धोखा ही होता है कि सामने लोग खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं, वो समझते हैं मेरी बात चल रही, ये चलती नहीं है, ये धोखा होता है। और एक अजीब रिवायत हमारे पास मौजूद है, कहा कि अगर किसी शख्स का एहतराम उसके खौफ की वजह से हो रहा हो तो ये शख्स का अहंकार नहीं है। यानी सब तौर पर कोई एहतराम करे, नाउज़ुबिल्लाह, किसी का एहतराम हो रहा हो इस वजह से हो रहा हो कि इसका एहतराम नहीं कर दे मुसीबत में आएगा, बेइज्जत कर देगा, ताकत इस्तेमाल करेगा, ताल्लुकात इस्तेमाल करेगा, मेरे काम फंसा देगा, इस वजह से एहतराम हो रहा हो। अब आप जानते हैं पाकिस्तान में ज्यादातर पॉलिटिशियंस का एहतराम इसी लिए हो रहा हो, ज्यादातर जो हमारे यहाँ जागीरदार जमींदार बड़े सियासतदान पैसे वाले इन लोगों का एहतराम होगा ही इसी वजह से कि भाई अगर नहीं किया तो इसका नहीं पता क्या करने वाला है, तेरे मुसीबत आ जाएगी, तो मुसीबत टालने के लिए आदमी कहता है भाई थोड़ी देर के लिए एहतराम कर लो इसका, इससे जान छुड़ाओ किसी तरीके से। तो हमारे यहाँ मशहूर है हम कहते हैं पुलिस वालों की दोस्ती भी हो रही है दुश्मनी भी हो रही है, तो दूर दूर रहो। हम लोग गवर्नमेंट के मामले में यही कहते हैं, इन्वेंटरी बता रहा है जब किसी ने पाकिस्तान में काम करना हो तो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट को पैसा दो कि दूर रहे, साथ ना दे, साथ दे के बहुत खराब हो जाएगा, दूर रहो, जरूर प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इन सब के पीछे असल दर्द क्या है? तकबर बंद है, तकबर बंद है, तकबर में जाएंगे अमल खराब होगा, और ये धोखा शौहर और बीवी के ताल्लुकात में घरेलू ताल्लुकात में बहुत ज्यादा है, ये धोखा बहुत ज्यादा है कि मैं शुरू में समझ रहा होता है कि मेरी बात चल जाएगी, नहीं चलती, कहीं ना कहीं जब कमजोर पड़ेगा तब समझ में आएगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलती, लेकिन मुश्किल से यह होगी कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैंने एक बार आपकी खिदमत में अर्ज किया था, और मैं भारत में छोटी लड़की का जाता हूँ काम करता हूँ, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर खुदा के हुक्म को टाल दिया किसी मोहब्बत के खिलाफ तो वहां से मोहब्बत नहीं मिलती जिल्लत मिलती, ये मैंने अर्ज किया था आपको, और औलाद की मिसाल दी थी, और अभी दूसरी बात कही वो ये कि तकब्बुर के साथ मामला नहीं चलता, एंड जाके मामला खराब होता है, दोनों को मिलाते हुए एक वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, वाक्य है और देख यानी उस जमाने का जो हमारा देखा होता, कभी होता है वाक्य सुनाते हैं ख्याल से ना देखा उसकी भी तासीर है, लेकिन अगर देखा और सुनाते हैं उसकी तासीर ज्यादा होती है। मैं ये क्यों ऐसे सुनाता हूँ, दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद
मस्जिद बड़ी खस्ता हाल थी, पहले से टूटी टूटी मस्जिद थी, उसका एक मौसम था वो भी बेचारा टूटा
बयान करते थे उसको। उसने कह के एक दिन मजबूर बुलवाया मस्जिद के बाहर, मस्जिद के बाहर लोग आए कहेंगे, लोग आए कहेंगे ये क्या हिमाचल की मस्जिद की दादी हमारी, क्या मतलब आप गिर गए ना आप बताओ। वैसे तो मैं मनाना नहीं था, पता नहीं कितने साल से बोल रहा हूँ मस्जिद बनाओ मस्जिद बनाओ, नहीं मनाना थे उसने गिर आया नहीं मस्जिद का, आप जाओ जमात नहीं है हमारे पास, मस्जिद बनाना करवानी नहीं जमात करवानी मस्जिद बनवाओ। मस्जिद बनी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त मस्जिद बनी, कि वो बेचारा भागा भागा गया हर एक से परमिशन मांगा चंदा मांगा ये किया वो किया। वो जमाने में बहुत बड़ा दमाश होता था मादर के साथ, मैं बार बार बिल्कुल ही कहानी बनाने सुनाने वाला बता रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें कन्वे करनी है आपकी जिंदगी के तजर्बे से। उस जमाने में बड़ा चढ़ा आदमी होता था, ठीक ठाक सदन उल्टे सीधे काम में मशगूल होता था, मैं शादी अलग अलग करता था, प्रतिसंधि से यह पता नहीं क्या बना रशिया नहीं था कि उसके पास किया सामने में मस्जिद बना रहा हूँ जो मिशन दो। अच्छा वो भी जानता था कि भाई मैं क्या हूँ, इसको भी पता था कि वो क्या है, तो उसने कहा असगर नाम करके कहा असगर असगर लगा करके भी कहते थे उस समय, तो उसने उससे कहा कि तुझे पता है कि भाई मैं क्या हूँ, तू मेरे पास है डोनेशन देने की, तुझे पता है हमारा अच्छा दो नंबर का है, कहने लगा तू डोनेशन दे दे मैं टॉयलेट बनवाऊंगा।
तीन साल बाद उससे बड़ी जगह पहुंच गया जहां आराम से पहुंचा था,
एक फर्क के साथ, जब तो हराम देता था तो चैन नहीं था, अब चैन से सुकून, अब चैन, अब सुकून, अब मुझे पता है सही कदम, मर भी जाऊं कोई मसला नहीं है, उसको डरता रहता था मर गया तो क्या होगा। अब सुनाना है यहां बता, इतनी लंबी कहानी के बाद अब तस्वीर शुरू हो गया। इसका एक दोस्त था, वो उस बिजनेस का नंबर वन था, ये नंबर टू था वो नंबर वन था। उसके पास गया, मैंने देख भाई मैंने छोड़ा है, छोड़ा है और पैसा छोड़ के निकला था, अब धीरे धीरे पैसा आ गया। अगर पैसे की खातिर रुका हुआ है तो ये पैसा दोबारा आ गया है, तू भी छोड़ दे। उसने फिर कोई दास्तान सुनाई, क्या कह रहा है पैसा लगा हुआ है, निकला है झगड़ने के लिए। उसने कहा नहीं भाई ये नहीं करता है, अपनी मां के उसको भी समझ आएगा, इसको छोड़ के निकलना होता है, नहीं मान। अब इसका एंड तो अच्छा हुआ, उसका एंड ऐसा था, उसका एंड ये हुआ कि उसको पैरालाइज हो गया, उसका अटैक हुआ, पैरालाइज हुआ, पैरालाइज हुआ और ऐसा पैरालाइज हुआ कि व्हीलचेयर पे आ गया, व्हीलचेयर पे। अब जना कोई भी पैसा कमाया था, कोई इलेक्ट्रिक शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक शुरू किया। एक दिन कह रहा था कि हमारा दोस्त मुझे बता रहा था, कहने लगा उस वक्त क्या कहूँ बालकों मर गया, वो जो नंबर वन था बालक मर गया था, अपन तो वो जिंदा था मेरे पास आए थे जो हमारा दोस्त था। कहने लगा मारा आपको याद है मैंने उस आदमी ने बताया था जिसको मैंने कहता है अपन छोड़ दे छोड़ दे नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा हाँ, कहने लगा उसको पैरालाइज हो गया। मैंने कहा कि क्या सोच रहा है, अब सुनिए और सुनिए। कहने लगा मैं उसको मिलने गया तो आंसुओं से रो रहा था, तो मैंने कहा भाई ठीक है यार तू बीमार हो गया तो मसला नहीं है, पैसा लगाएंगे सही हो जाएगा तू। कहने लगा इसका मसला नहीं है, मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मार के गया। कहने लगा मेरा लड़का मुझे थप्पड़ मार के गया और मेरी बीवी मेरे चेहरे पे थूक गई है। कहने लगा तुझे याद है मैंने अपनी बीवी के लिए क्या नहीं किया, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया। जिस जमाने में हमें किसी एक के पास एक लैपटॉप होता ना, तो हम कहते थे आज उसके पास बहुत फैसिलिटी है, इसके बच्चों के पास तीन तीन लैपटॉप होते थे। क्या मतलब क्या मैंने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है अगर मेरी थप्पड़ मार ली है और वो बीवी जिसके लिए सब कुछ किया है वो थूक के गई है। तो इसने हमारे दोस्त ने सोचा कहने इनकी गलती नहीं है, हमने इनको हराम कमाया था ना, ये वो बोल रहा है हराम किया था ना, हराम का दिया इज्जत नहीं देता है, जिद्दत देता है, कभी ना करके आती है। फिर इसने बहुत इसको हिम्मत दिलाई, कहने लगा सर तू बिजनेस छोड़ दे, अभी ये फारिग में पढ़ा हुआ था, अभी ये सोचा था बिजनेस रखूंगा, नहीं छोड़ा, कुछ दिनों के अंदर एक और ड्रामा हो गया। बीवी ने इसकी सारी जायदाद अपने नाम की, सब कुछ लेकर इसको ताना छोड़ दिया। बाद में हमारा दोस्त था मुझे खर्चा देता था, इसी हालत में मर गया। ये मैं आपको सामने हुआ है इसी दौर में, इसी रहते हैं आपके आपको सामने। खुदा की कानून नहीं टूटेंगे, खुदा की कानून चलेंगे। ये दोबारा वापस आ रहा हूं अपनी बात के ऊपर, तकबर की जिंदगी नहीं गुजर जा सकती, तकबर की जिंदगी में तन्हाई है, तन्हा रहना पड़ेगा, उस वक्त तन्हा रहना पड़ेगा जब तक तन्हाई का अज़ाब बन जाए। तो उससे अगर बचना है अभी तकबर छोड़ो, लोगों के साथ इंसान बन जाओ, हर एक को अपने बराबर समझो बल्कि बेहतर एक दूसरों को अपने से बेहतर समझो, ताकि जिंदगी आसान हो, किसी को हकीर न समझो, किसी की इंसल्ट न करो, किसी को अपने से पस्त न करो, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान होगी, आप लोग खुश रहेंगे, दूसरे लोग खुश रहेंगे, जिंदगी मुश्किल आती है। ये पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट कल अर्ज करूंगा, अभी बहुत बहुत तेज हुआ और इंशाल्लाह कल उस पॉइंट के ऊपर तकमील करेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया कि तकब्बुर हर चीज नहीं था, और दूसरे पॉइंट के ऊपर कल इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह करे कल तक जहन से निकल जाए। चंद रात में आती रहती हैं, इन चंद रात को मुफीद बना लें, आप पहले माशा मेहनत कर रहे होंगे, एक दो पॉइंट्स अपनी जिंदगी में अच्छाई के बढ़ा चुके हों, आप सेल्फ माइंड से पूरा बात हुई थी, मैंने अगले तक मानव साहब के सामने आपको साल कर चुका हूँ, मेरे को मैंने चाहिए था इतना कि मैंने टाइम भी दे दिया इनका, पता नहीं देखा आप टाइम रही होगी और इनका टाइम भी काफ़ी लग चुका है, जो कुछ पॉइंट्स अब तक कह ही रहे थे उनको मैंने दोहराया देता हूँ, सुनी कर मुझे और आपको दानों की सारा दिन सी और मैं अक्सर सजा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, एक सजा कम से कम दिन दिन के अंदर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, अक्सर सोलह की तस्वीर की खास तरीके से पढ़नी चाहिए, तस्वीर पढ़ने की बात हुई थी आप किस तरीके से तस्वीर पढ़ेंगे उसका दिल के ऊपर असर होगा, ये बात हुई थी कि एक दिन में कोई लम्हा ऐसा होना चाहिए चंद मिनट ही सही कि जब आपका दिल खुदा से जुड़ा हो, आप खुदा से बात कर रहे हैं चाहे उसी सजे में हो, इस्तफार कर रहे हो खुदा को खुदा माफ कर मन गलतियों कर इस्तफार से खुदा फरमाता है बहुत सारे वादे दिए उस इस्तफार पर, आपको कभी मोहम्मद सूरह नूह के शुरू में सूरह हूद के शुरू में इस्तफार के वादे बेतहाश बेतहाश हैं,
بجاه محمد وآله الطاهرين.